प्राचीन अनेक उपनिषदों में तथा तंत्र ग्रंथों में नाद के अभ्यास का स्पष्ट निरूपण है। जिसको देखने की इच्छा हो उन ग्रंथों से देख ले, जहां तो केवल शब्द का विचार प्राप्त है, उसके विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी किंचित मात्र लिखते हैं, जैसे पाठकों को निश्चय हो जाएगा कि नाद का अभ्यास प्राचीन काल में भी था। हंस उपनिषद में यह नाद रूप नाद शब्द 10 प्रकार का कथन किया है और उसके अभ्यासी के चिन्ह भी कहे हैं। तथा ही पहला चटका का शब्द है, जिसके सुनने से रोमांच हो जाते हैं। दूसरा पुनः पुनः चन चन का शब्द होता है, जिसके सुनने से शरीर के सर्व अंग प्रफुल्लित हो जाते हैं। तीसरा घंटे का शब्द है, जिसके सुनने से मानादक अंगों में प्रेम की प्रकटता होती है। चौथा शंख का शब्द है, जिसके सुनने से मतवाले पुरुष की न्यायी सिर का पारमन होता है। पांचवा वीणा का शब्द है, जिसके सुनने से ब्रह्म रंध्र दशम द्वार से अमृत का शराब होता है, भाव अमृत जाता है। छठवा नृत्यकारी का शब्द है, जिसके सुनने से कंठ गात अमृत का पान होता है। सातवां बांसुरी का शब्द है, जिसके सुनने से शक्तिमान होता है, अर्थात अंतर्जानता, दूर के शब्द का सुनना तथा दूर की वस्तु का देखना होता है। आठवां पखावज का शब्द है, जिसके सुनने से प्रत्येक शरीर के अंतर जान या नाद है, उसका सुनना तथा समझना होता है। नावा छोटी नफीरी का शब्द है, जिसके सुनने से रूखम तथा स्थूल हो जाना और जहां इच्छा हो वहां जाने की समर्थ होती है। दसवां मेघ का शब्द है, जिसके सुनने से ब्रह्म आत्मा के साक्षात्कार से ब्रह्म रूप होता है। और कितने ग्रंथकारों ने वह अनाहद पांच प्रकार का लिखा है। तथा ही पहला तंत्री खादकों का शब्द है, दूसरा मृदंगादकों का, तीसरा घंटे आदकों का, चौथा काटादकों का, पांचवा नफीरी आदकों का, तत् वित्त घन नाद सोहवर, ये पांच क्रम से इनके नाम हैं। वास्तव से इन उन दशों का इन पांचों के ही अंतर भाव है। इसी से गुरबाणी में भी पांच शब्दों का ही कथन है। जैसा पंच शब्द धुनकार धुन तह, पंचे शब्द अनाहद बजे। इस प्रकार सर्व शरीरों के अंतर ही वह शब्द उत्पन्न होता है। सर्व ही पुस्तक उस शब्द का अनुकरण होने से शब्द कहलाते हैं और पुनः उसी शब्द या वाणी को सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर सूक्ष्म स्थूल ये चार अवस्थाएं हैं। पराप शांति मध्यम बैखरी ये चार क्रम से उनके नाम है। पहली ज्ञान स्वरूप नाभि में निवास करती है, दूसरी संकल्प रूप हृदय देश में रहती है, तीसरी मंद स्वर रूप कंठ में बसती है, चौथी स्पष्ट वर्ण आत्मक मुख में निवास करती है और वही श्रोता पुरुष के कान में पहुंचकर वक्ता के अभिप्राय को उसके अंतःकरण में प्राप्त करती है। उसी का विस्तार तथा अनुकरण सर्व पुस्तक है। समय समय में कथा उस देश की भाषा के अनुसार उस देशस्थ पुरुषों के व्यवहार तथा पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए महर्षियों ने तथा महापुरुषों ने तथा और विद्वानों ने नाना प्रकार की लिपियों में स्वय स्वय वाणी को प्रकट किया। इस प्रकार व्यवहारिक तथा धार्मिक पुस्तकों को वाणी का अनुकरण कहना विद्वानों के समीप अनुचित तथा विरुद्ध नहीं, परंतु विचारहीन मूढ़ों को तो यह कथन आश्चर्यजनक तथा विरुद्ध प्रतीत होता है। उनको कर्ता पुरुष विचार तथा सुमति प्रदान करे, जिससे वह भी मोक्ष मार्ग के भागी हों। पूर्वोक्त महा अनुभावों का महान उपकार है, क्योंकि उनके बनाए हुए पुस्तकों द्वारा ईदानी काल में हम सब नाना प्रकार की विद्या से भोग तथा मोक्ष का लाभ कर रहे हैं। इस वास्ते सर्व पुरुषों को उन महान भावों का बारंबार धन्यवाद करना चाहिदा है। उनमें भी विशेष कार कलि काल में प्रकट हुए हरि के अवतार रूप सत श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी देवादकों को मधुकों की रचना की हुई वाणी का भंडार रूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो ये सब देशों की भाषा से मिश्रित है और सर्वजनों के हितार्थ है, उस परोपकारी महापुरुषों का हमको बारंबार धन्यवाद करना चाहिए। पूर्व प्रसंग शब्द का चला हुआ था, इसी को पुनः निरूपण करते हैं। वह शब्द मत भेद में नित्य तथा अनित्य माना है, परंतु वेदांत मत में तथा श्री गुरु साहिबान के मत में वह शब्द अनित्य ही माना है, क्योंकि जगमात्मा से भिन्न सर्व ही अनात्म वर्ग अनित्य है। इस प्रकार वास्तव में गुरबाणी तो श्री गुरु नानक देव जी और देवताओं के पुत्र शरीर के अंतर्गत ही थी, परंतु उसका अनुकरण होने से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भी गुरबाणी कहलाता है, और भी गुरु अर्जन देव जी ने उस वाणी को संग्रह किया और दशम गुरु जी ने उसके गुरु पदवी या गुरुओं की देह रूपता स्थापन की। इसलिए भावना में गुरु से बिना साक्षात गुरु रूपता उसमें असंभव है। शंका, गुरु ग्रंथ के साक्षात गुरु रूपता का असंभव तुम क्यों कहते हो? क्योंकि दशम गुरु जी ने प्रगट गुरुओं की देह रूपता कथन की थी, और गुरु ग्रंथ जी में भी शब्द को गुरु रूपता स्पष्ट करी है। वाणी गुरु गुरु है, वाणी विच वाणी अमृत सारे, ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब जी को भावना में गुरु कहना। ये वादन जिस वाक के पदों की शक्ति वृत्ति से अर्थ न बनता हो, उसमें लक्षण वृत्ति से अर्थ करना होता है। जैसे सिंगो देवदत्ता, इस वाक में देवदत्त का सिंह के साथ वास्तव भेद तो समझता नहीं, क्योंकि पशु जी का मनुष्य देह से भेद प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है, परंतु सिंह जैसे क्रूरता शूरता आदि गुण उसमें पाए जाते हैं, इस वास्ते उसको गौण सिंह रूपता है। तैसे ही गुरु ग्रंथ जी में साक्षात गुरु रूपता तो प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है, क्योंकि दास गुरु के देह तो हस्ती आदादक अवैभों वाले हैं, और जहां तो नेत्रों से एक पुस्तक का आकार प्रतीत होता है, और दास गुरु तो प्रश्न करने से अनंतर शेष को उत्तर प्रदान करते थे और यहाँ तो किसी प्रश्न का आचार कभी भी किसी शेष को नहीं मिला। इस वास्ते पूर्वोक्त वचनों में लक्षण जाति का ही स्वीकार है। सत गुरु की रचना की हुई वाणी का भंडार रूप ग्रंथ है, इसलिए सतगुरुओं ने तुल्य ही अत्यंत मानी और पूज्य है। इस पर गौण भेद होने से गौण गुरु रूपता का पावना में गुरु रूपता का ही संभव है, साक्षात गुरु रूपता का असंभव नहीं। किंबा जैसे मार्ग प्रदर्शक चिन्ह मार्ग के विभक्त स्थान में लगाया जाता है, वहाँ साखर पुरुष जो उस पर लिखे अक्षरों को पढ़कर मार्ग का निश्चय कर ही सकता है, परंतु निरक्षर के लिए तो वह चिन्ह जड़ा अकिंचित कर है और साखर पुरुष भी समान से मार्ग को निश्चय कर सकता है। इसी से निरासंशय होकर उस मार्ग में नहीं गमन कर सकता। यदि कोई पुरुष उस मार्ग द्वारा गंतव्य स्थान पर पहुंचा हुआ अकस्मात उसको मिल जाए तो उसे बड़ पूछ कर मार्ग निश्चय करता है, तो निसंदेह होकर मार्ग में चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। ऐसे ही निराक्षर पुरुष को गुरु ग्रंथ जी से किंचित मात्र भी मार्ग का निश्चय नहीं कर सकता। निराक्षर पुरुष भी दूसरे साखर पुरुष से पाठ या आर्ज सुन करके मार्ग का निश्चय कर लेगा। समझने वादन फिर जो बलात्कार से गुरु ग्रंथ साहिब जी से जुदा देहधारी वह भी गुरु का शिष्य होने से उसका गुरु भाई है। ये वादन जैसे परम पिता परमेश्वर के सर्व मनुख पिता पूत भाव युक्त पुत्र हुए, इसी से सब परस्पर भाई हैं, परंतु भाई होने पर भी उनका पिता पुत्र भाव कोई दूर नहीं कर सकता। ऐसे ही एक गुरु मत है, वशिष्ठ परविष्ट सब गुरु मत के लोग यद्यपि परस्पर गुरु भाई हैं तथापि अक्षर पाठ अर्थ तात्पर्य के सिखाने वाले तथा सीखने वाले का गुरु शेष भाव कोई भी दूर नहीं कर सकता। परंतु इसमें इतना भेद है कि अक्षर आदकों के सिखलाने वालों का भी बहुत उपकार है। ऐसे वह भी गुरु तो है, परंतु वह पूर्ण गुरु नहीं कहे जाते, क्योंकि पूर्ण गुरु तो वही है जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ होकर शरणागत अधिकारी को भी अपने उपदेश से ब्रह्मनिष्ठ कर दे। शंका यद्यपि निराखरपुर को तो दूसरे पुरुष की अपेक्षा हो, परंतु साखर पुरुष को स्वयं ही गुरु ग्रंथ जी से मार्ग का निश्चय करके गंतव्य स्थान को प्राप्त हो जाएगा। उसको दूसरे दिन गुरु की क्या अपेक्षा है? समाधान ही वादन, प्रथम तो दूसरे की अपेक्षा से बिना साखर नहीं हो सकता, चाहे कितना ही बुद्धिमान हो, परंतु दूसरे के सिखाए बिना चरणों का आचरण तथा पाठ तथा अर्थ और उसके तात्पर्य का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। सो ऐसा होकर भी फिर स्वयं गुरु ग्रंथ से मोक्ष मार्ग का समाधान जमान ही पा सकता है, जो कि गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। यदि गुरु का और शब्द का अत्यंत भेद माने तो दोनों में एक शेष रहेगा। क्योंकि जहां मुख भेद होता है वहां एक के अंतर भाव होने से एक ही शेष रहता है। जैसे नदी जब समुद्र के अंतर भाव होती है तो समुद्र ही शेष रहता है, नदी नहीं रहती। जैसे तैसे गुरु तथा शब्द का परस्पर अंतर भाव होने से गुरु जन शब्द इन दोनों में से एक शेष रहेगा और सापेक्षक का निरपेक्ष दो पदार्थों में जो पदार्थों में से निरपेक्ष ही बलवान होता है, इस न्याय के अनुसार गुरु का ही शेष ग्रहण योग है। क्योंकि शब्द से बिना भी गुरु विद्यमान है और शब्द गुरु के शरीर से बिना निराश्रय कहीं भी निश्चय नहीं हो सकता। और यदि ऐसे कहो कि गुरुओं के परलोक उनके अनंतर भी शब्द पुस्तकादि रूपता से स्थित है, सो यह कथन भी नहीं संभव था। क्योंकि प्रथम जो कालपत अक्षरों को शब्द रूपता की कही संभवती है, यह वार्ता पूर्व विस्तार पूर्व कह रहे हैं। इस प्रकार शब्द में गुरु के शरीर का अंतर भाव नहीं संभवता, ऐसे आस्पद उपत गौण भेद ही जैसे शब्दों को कहया मुख भेद नहीं कहया। जैसे बाण के चलाने वाला पुरुष और बाण तथा लक्ष्य इन तीनों का भेद प्रसिद्ध है, तैसे उपदेश गुरु जो के उपदेश रूप बाण के चलाने वाला और उपदेश रूप बाण और शेष रूपता लक्ष्य इन तीनों भेद भी अनुभव सिद्ध है। गुरु उपदेश को बाण रूपता भी कबीर जी ने कथन करी है। कबीरा साचा सतगुर में मिलया, साधु आया एक लाभ के कोई मिल गया पया करे जे शेख। कबीर जी कहते हैं कि सच्चा सतगुरु सुख को मुझको मिला, जिसने मिलते ही उपदेश रूपी एक बाण चलाया, जिस बाण के चलते ही और इस उपदेश रूप शब्द द्वारा ही गुरु अपने व्यवहारक ज्ञान परमार्थक ज्ञान को श्रोता शेष के हृदय में प्रकट कर देते हैं। और वह जैसे ज्ञान स्पन्न होकर अन्य पुरुषों को ज्ञान का दाता हो जाता है, जय भी दीपक से दीपक का प्रकट होना कहते हैं। और इसी रीति से जगत में सर्व प्रकार की विद्या का संप्रदाय चल रहा है। जिस विद्या का कोई उपदेष्टा ना हो वह लोप हो सकती है। जैसे एक वैद्य से चिकित्सा सीखकर दूसरा अपने वैद्य होकर वैद्य विद्या का प्रवर्तक है, वैसे ही सद्गुरु से आत्म विद्या को सीखकर स्वयं गुरु होकर वह पुरुष भी आत्म विद्या का प्रवर्तक है। जय भी गुरु ग्रंथ जी का अति स्पष्ट आशय है। साक्षात बाण पाद अंकत प्रमाण कहते हैं। वीर गुंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पावते पिंगल पया मारा सतगुरमान। कबीर जी अपनी दशा कहते हैं, अब मैं सतगुरु ने मुझको उपदेश रूपान मारा, तब से मैं किसी की निंदा तथा स्मृति के न कहने से मूकवत हुआ हूँ। और व्यवहारों में बुद्धि कैसे सो बावरे के तुल और कान से इंद्रा स्मृति से के ना सुनने से बहरे के और चरणों से किसी चोरी आदक मंद कर्मों में ना जाने से پنگلے کے تل ہو گیا ہے، انتر پیاس انتر پیاس لگی پرم پیری سن کر وچن منتی لگیا تادکن ایک پروچن میں پدیشتا تھا پدیشتا کا پید ہی کتن کیا ہے۔ اور شری گرو گرنتھ صاحب جی شری گرو نانک دیو دے دیواگوں کے اپدیش کان من کا ایک کوش ہے، اور جیسے پتا کے نج تن کا پاگی آگیاری پتر ہی ہوتا ہے، تیسے گرو مت میں پرویشٹ جو ان کے شیش برہم گیانی گرومکھ سنت جن وہی اس کرودھ کے پاگی ہیں، کیونکہ سنتن ہاتھ راکھی کنجی۔ اس وچن سے اس کوچ کی کنجی سنت روپی گروؤں کے پاس ہے، وہ گرو ہی ساکھیا سارن آگت شیش کے سنتاپ کارک براہم آدک شتروں کو اپنے اپدیش کر بانوں سے ناش کرتے ہیں، سویم بان لکش کو بدھ نہیں کر سکتا۔ وہ اپدیش تو بھی گرو نانک دے ہے دیوادکوں کار کا ہے، اس لیے بڑی گرو کیسے ہو سکتا ہے جیسے کسی ایک راجا کی آگیا کا آن پرتھوی کو سنانے والا راجا نہیں ہو سکتا۔ سمندن ایبادن جد پی بے آگیا سنانے والا پرش راجا نہیں ہو سکتا، تتھاپی جدی راجا کا پتر ہی راجا کی آگیا سنانے والا ہو تو اس کے راج پنے کو کون نوارن کر سکتا ہے، جیسے تیسے ان کے اپدیش شرن دھارن کرنے والا شیش سویم سات پرکھ کا گیاتا ہوا اور ادھکاریوں کو رچنے اپنے اپدیش دوارا ست پرکھ کا انبھو کراتا ہے، اس کے گرو پنے کو کون نوارن کر سکتا ہے۔ جدی برہم گیانی سنت جن کو انیک گرو وچنوں سے برہم روپتا کہی تو اس کو گرو روپ ہونے میں تتھا آشچرج ہے، واسطو وچار جو وہ ہے کہ سب کا پرم گرو کرتا پرکھ ہے، اس پرم گرو کا اپدیش پنچ پرتھم گرو نانک دیو جی کو پراپت ہوا، ان سے آگے ان کے ششوں کو پراپت ہوا۔ ایک پار ششن کی پرمپرا سے ہی اس اپادے کا پرواہ جگت میں چل رہا ہے، دیو تاریوں کے بنا اس اپدیش کا پرواہ کسی ریتی سے بھی نہیں چل سکتا۔ پورو سنگرہ کتھن کا جہ رہاس ہے کہ گرو گرنتھ صاحب جی سے بھن دے تاری گرو کا نشید بھی گرو صاحباں کے آشے میں اتینت ورد ہے، اور ایسے کہنے والے پرش گرو مت کے لوگوں کے پرم شترو ہے، کیونکہ ان کو موکش مارگ سے پرشت کرتے ہیں۔ اس وجن کے انسار وہ سوارتھ ناستک ہوئے اور لوگوں کو بھی ناستک بناتے ہیں، کیونکہ وہ پرکش بےدادی پراچین ترم پستکوں کو تو پرمان ہی نہیں مانتے، اور گروانی جو دے تاریخ کو گرو کہتی ہے اس کو بھی پرمان نہیں مانتے، ایسا ہی گرو مت کے لوگوں کو اپدیش کرتے ہیں جو اس سے ادک اور ناستکتا کیا ہے، ایسے پرشوں کو کرتا پرش سشکتی پردان کرے، انہ پورو پکش چیتکا اپدیشٹا گرو کا जाता है। जय लक्ष्मण गुरु ग्रंथ जी में संस्कृत असंभव है, जो नाम अंधेरे पर है और रूप नाम प्रकाश का है। शेष के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको जो ज्ञान रूप प्रकाश से दूर कर दे सो गुरु कहा जाता है। जय लक्षण भी गुरु ग्रंथ जी में पूर्ण है, क्योंकि अपने उपदेश से शिष्यों के अज्ञान को दूर करके ज्ञान रूप प्रकाश देते हैं। इस वास्ते गुरु की अपेक्षा जो वस्तु अपने आप को नहीं जानती वह दूसरे को उपदेश कैसे दे सकती है। इसे इतने दृष्टांत हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं, परंतु हमारे मन में जो श्री गुरु ग्रंथ जी में श्री गुरु नानक देव जी दे आदि दस गुरुओं की कीमत, दस गुरुओं की ज्योति विराजमान है, क्योंकि तुम्हारी शंका की प्राप्ति ही नहीं। और इसमें निष्ठांत भी चरण कीजिए, जैसे सूर्यादकों के प्रकाश में सचक्षु पर सर्व व्यवहार स्वयं सिद्ध करते हैं, किसी बात से भूलते नहीं। और जैसे खजूर की दुकानों के आगे अक्षर लेकर काष्ठाति के चिन्ह लगाए होते हैं, उनको पुरुष स्वयं पढ़कर उस दुकान आगे दुकान वाले को मिलता है। और जैसे एक की चिट्ठी जब किसी दूसरे के पास पहुंचती है, उसको स्वयं वह पुरुष पढ़कर गोपेद को जान लेता है। और जैसे राजमार्ग में तहां से चार या पांच मार्ग विभक्त होने हो, वहां एक अष्ट से चार चार पांच चिन्ह साइन बोर्ड अक्षर लेकर लगाए होते हैं, उनको स्वयं पुरुष पढ़कर मार्ग का ज्ञान पाकर जिस नगर में जाना हो वहां पहुंच जाता है। जब ऐसे पदार्थों से भी पुरुष को उपाधि मिलता है तो दास गुरुओं की ज्योति से ज्योत जोग रूप श्री गुरु ग्रंथ जी से उत्पन्न उपदेश के होने में क्या प्रयोजन है।